ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सभा में नेपाली युवाओं को भारत भेजकर बंधक बनाने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान कर अधिकतम कार्यवाही करने की सांसदों द्वारा सरकार का किया गया ध्यानाकर्षित। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संभव सभी तैयारियां की गई है। गृहमंत्री रमेश लेखक द्वारा संसदीय समिति को जानकारी। कालीकोट के रासकोट नगर पालिका 3 की दलित बस्ती में एक घर एक धारा योजना के तहत 178 घरों को कराया गया पीने का पानी उपलब्ध। और मध्य अफ्रीका में एक स्कूल के पास विस्फोट के बाद भगदड़ मचने से 29 छात्रों की मौत और 280 से अधिक घायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में पेयजल सेवा को नागरिकों की पहुंच में लाने संबंधी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। राष्ट्रीय सभा में पिछले 6 जुलाई को दर्ज प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक नागरिक तक पेयजल की पहुंच बढ़ाने के लिए जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संस्थाओं को सुविधाएं प्रदान करने और नेपाल में ब्लीचिंग पाउडर उद्योग स्थापित करने संबंधी संकल्प प्रस्ताव पेश करते हुए सांसद जग प्रसाद शर्मा ने कहा कि स्वच्छ पेयजल एक मौलिक अधिकार है जिसे सरकार को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। विधान व्यवस्थापन समिति की अध्यक्ष तुलसा कुमारी दाहाल ने प्रतिनिधि सभा से प्राप्त कुछ नेपाल आयन में संशोधन संबंधी विधेयक 2080 पर समिति की रिपोर्ट पेश की। इससे पहले सांसदों ने नेपाली युवाओं को भारत भेजकर बंधक बनाने वाले व्यक्तियों समूहों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने, स्थानीय निकायों में शीघ्र प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने और महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाओं की सुविधाएं बढ़ाने की मांग की थी। साथ ही पुराने वाहन मालिकों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराकर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने और कोरोना व डेंगू नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की अपील की गई। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आषाढ़ 15 गते रविवार दोपहर 12:15 के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा में प्रतिनिधि सभा से प्राप्त विनियोजन विधेयक 2082 पर सामान्य चर्चा समाप्त हुई। राष्ट्रीय सभा की बैठक में उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल द्वारा रखे गए प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2082 पर विचार किया जाए के प्रस्ताव को बहुमत से स्वीकृति मिली। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक में विनियोजन विधेयक 2082 के अंतर्गत मंत्रालयगत आवंटन शीर्षकों पर चर्चा शुरू होगी। विनियोजन विधेयक 2082 पर सैद्धांतिक चर्चा के दौरान सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौड़ेल ने कहा कि यह बजट संतुलित और क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त है। उन्होंने बताया कि बजट के आकार को निर्धारित करते समय संसाधन प्रबंधन को व्यवहारिक नियमित और संतुलित रखा गया है तथा बजट निर्माण में अनुशासन का पालन किया गया है। अगली बैठक में मंत्रालयों के बजट आवंटन पर विस्तृत चर्चा होगी। गृह मंत्री रमेश लेखक ने बारिश के बढ़ते खतरों को कम करने के लिए पूर्व तैयारियों की जानकारी दी। प्रतिनिधि सभा के कृषि सहकारी एवं प्राकृतिक संसाधन समिति की आज की बैठक में गृह मंत्री रमेश लेखक ने बताया कि इस वर्ष सामान्य से अधिक बारिश होने के पूर्वानुमान के कारण बाढ़, भूस्खलन और जलभराव जैसी घटनाएं बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सभी संबंधित निकायों को पूरी तरह तैयार रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि आपदा जोखिम कम करने के लिए सूचना प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए दूरसंचार कंपनियों के साथ चर्चा करके एक व्यवस्था की जा रही है जिसमें जोखिम वाले क्षेत्रों के लोगों के मोबाइल पर अलार्म बजेगा और कॉल उठाने पर आपदा की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा मोबाइल मैसेज और वॉयस मेल के जरिए भी चेतावनी भेजी जाएगी। गृह मंत्री ने बताया कि काठमांडू घाटी के अलावा सभी 7 प्रदेशों में आपदा प्रबंधन के लिए गोदामों को प्रदेश सरकारों को हस्तांतरित किया गया है। हर स्थानीय तह पर गोदाम बनाने का निर्देश दिया गया है ताकि आपदा स्थिति में राहत सामग्री तुरंत उपलब्ध हो सके। जल एवं मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक कमलराज जोशी ने बताया कि इस वर्ष सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख दिनेश प्रसाद भट्ट ने कहा कि नेपाल आपदा की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम वाला देश है, इसलिए सतर्कता बरतनी जरूरी है। सर्वोच्च अदालत के प्रस्तावित न्यायाधीशों और न्याय परिषद सदस्य के खिलाफ संसदीय सुनवाई समिति में 5 शिकायतें दर्ज की गई है। संसदीय सुनवाई समिति की अध्यक्ष ईश्वरी देवी न्यूपाने ने बताया कि सर्वोच्च अदालत के 3 प्रस्तावित न्यायाधीशों और न्याय परिषद के 1 सदस्य के खिलाफ 5 शिकायतें प्राप्त हुई है। इसके अलावा संसदीय सुनवाई प्रक्रिया से संबंधित 2 अन्य शिकायतें भी दर्ज की गई है, जिससे कुल 7 शिकायतें समिति के समक्ष पेश की गई है। संघीय संसद की संसदीय सुनवाई समिति की आज हुई बैठक में इन शिकायतों को खोला गया और समिति के सदस्यों को अध्ययन के लिए वितरित किया गया। समिति ने पिछले जेठ 31 को हुई बैठक में सर्वोच्च अदालत के प्रस्तावित न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, जनकपुर उच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश श्रीकांत पौड़ेल, दीपायल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शांति सिंह थापा और न्याय परिषद के प्रस्तावित सदस्य महेश कुमार नेपाल के मामले में 10 दिनों के भीतर शिकायतें आमंत्रित करने का निर्णय लिया था। अब समिति इन शिकायतों की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेगी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबू, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा कि संस्कृत नेपाल और भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की संपत्ति बन चुकी है। काठमांडू में आयोजित विश्व संस्कृत सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि संस्कृत भाषा, साहित्य और संस्कृति का दक्षिण एशिया में गहरा प्रभाव रहा है, लेकिन अब यह एक वैश्विक धरोहर बन चुकी है। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने घोषणा की कि नेपाल में 2035 तक 28,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा और 15,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। यह जानकारी उन्होंने चीन के झेंजियांग प्रांत के निंगबो शहर में आयोजित संघाई सहयोग संगठन के 5वें ऊर्जा मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए दी है। ऊर्जा मंत्री खड़का ने स्पष्ट किया कि नेपाल पारस्परिक सहयोग, पर्यावरण संतुलन और दीर्घकालीन विकास की अवधारणा के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा और क्षेत्रीय ऊर्जा संपर्क को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। कालीकोट की रासकोट नगरपालिका वार्ड नंबर के दलित बस्ती में एक घर एक पेयजल का धारा जोड़ा गया है। सागाटिया, कुमालवाड़ा और नयकला टोल के 178 घर दूरी में 5 किलोमीटर दूर से पानी लाकर एक घर एक धारा योजना के अंतर्गत पेयजल पहुंचाया गया है। बता दें कि घर घर में धारा जोड़े जाने से पुश्तों से रह रहे पेयजल का संकट अब समाप्त हुआ है। गुम किए गए व्यक्तियों की जांच आयोग के अध्यक्ष लीला देवी गढ़तौला ने कहा कि द्वंद्व पीड़ितों के आत्मसम्मान, सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान की रक्षा के मद्देनजर नियमावली तैयार की जाएगी। आज आयोग में आयोजित नागरिक अधिकार कर्मियों के साथ विचार विमर्श में अध्यक्ष गढ़तौला ने कहा कि नियमावली को पीड़ित मैत्री बनाई जाएगी और पीड़ितों को केंद्र में रखकर आयोग काम कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। विचार विमर्श में नागरिक अधिकार कर्मियों ने पीड़ितों के आवाज को गंभीरतापूर्वक लेने पर जोर देते हुए गुम किए गए व्यक्तियों के परिवारजनों को जितना हो सके जल्द न्याय देने के हिसाब से काम करने का सुझाव दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी के एक हाई स्कूल में हुए विस्फोट और उसके बाद मची भगदड़ में कम से कम 29 स्कूली बच्चों और अन्य की मौत हो गई। इस हादसे में करीब 280 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के मुताबिक यह धमाका बिजली के एक ट्रांसफार्मर को बदलने के दौरान हुआ है। देश के राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बुधवार को बांगुई के बार्थेलेमी बोंगाड़ा हाई स्कूल के परिसर में लगे एक बिजली के ट्रांसफार्मर में खराबी आने के बाद उसमें बिजली आपूर्ति बहाल की जा रही थी, उसी दौरान विस्फोट हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विस्फोट के बाद मची भगदड़ में 16 छात्राओं समेत ज्यादातर पीड़ितों की मौके पर ही मौत हो गई, अन्य की मौत अस्पताल में हुई। मंत्रालय ने कहा कि कम से कम 280 लोग घायल हुए हैं, उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। घटना के समय परीक्षाओं में शामिल होने के लिए स्कूल में करीब 5000 विद्यार्थी मौजूद थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय सभा में नेपाली युवाओं को भारत भेजकर बंधक बनाने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान कर अधिकतम कार्रवाई करने की सांसदों द्वारा सरकार का किया गया ध्यान आकर्षित। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संभव सभी तैयारियां की गई है, गृह मंत्री रमेश लेखक द्वारा संसदीय समिति को जानकारी। कालीकोट के राजकोट नगर पालिका 3 की दलित बस्ती में एक घर एक धारा योजना के तहत 178 घरों को कराया गया पीने का पानी उपलब्ध। और मध्य अफ्रीका में एक स्कूल के पास विस्फोट के बाद भगदड़ मचने से 29 छात्रों की मौत और 280 से अधिक लोग हुए घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।